संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है।
क्रमबद्ध पर्याय के एक शब्द में कहें तो यही कह सकते हैं कि सब कुछ निश्चित है, और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है अगर हमारे हाथ में क्या, जो कुछ तुम्हें हो रहा है उसके कर्ता तुम ही हो, यदि नहीं होते तो अनंत काल से जो मिथ्या मान्यता तुमने की है उसके फल में अनंत दुख तुम्हें क्यों भोगना पड़ता। ये तुम करता नहीं हो तो बात नहीं,
और यदि एक अंतर मुहूर्त भी आत्मा के दर्शन के कर्ता तुम नहीं होते तो उसके फल में अनंत सुख अनंत काल तक तुम कैसे भोगते। सवाल तो है फेरफार करने का कि जो कुछ होना सुनिश्चित है उसमें हम फेरफार कर सकते हैं या नहीं। साधु जी तो हम कह रहे ठीक है, अब आपको देते हैं, बहुत परेशान हो रहे हो कि नहीं कर सकते, आपके हाथ में है, बोलो आप क्या करना चाहते हो। आज तक भविष्य भूतकाल में जितनी पर्यायें हो चुकी हैं क्या उसमें परिवर्तन आप करना चाहते हैं, बोलो। वो तो हो ही गई, अब उनमें हम क्या करें। तो चलो इतना तो मानो ना कि भूतकाल वो सुनिश्चित है, क्यों, क्योंकि वो तो हो चुका है इसलिए वो नक्की है, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। हो चुका उसमें क्या करें, तो भूतकाल भी तो अनंत है ना। अभी अपनी समस्या थी कि कुछ भी नक्की नहीं है पर हम करेंगे जो होगा, तो अपने किस्त बाई किस्त उस काम को निपटाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि भूतकाल में जो हो गया है उसको भी हम बदलेंगे, क्यों नहीं है? नहीं, नहीं है ऐसे लोग, क्यों कैलाश जी, क्या पहले किसी ने किसी को मतलब सजा दे दी कि तुझे फांसी की सजा लगेगी तो हम अपील करते हैं कि नहीं करते, क्या मतलब है ये अपील करने की जो भावना है वो क्या है तो जब जो हो गया है उसे बदलने की बात ही तो है। अथवा आपने हमारे नाम पर 10,000 रुपये लिख दिए हैं, ये नहीं चलेगा, आप बदल दीजिए, हमारे नाम जमा कर दीजिए, हम नहीं देंगे। तो जो पहले हो गया है उसमें भी परिवर्तन करने की भावना वाले लोक में लोग हैं, नहीं है? इसलिए ये नहीं समझना कि भूतकाल की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भूतकाल की गलती को नहीं मिटा जा सकता है। पर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कल बुखार आया था, अभी तो नहीं है, है कोई ऐसी गोली किसी डॉक्टर के पास कि जो बुखार मुझे कल आया था उसे उतार दे, बोलो अमित भाई। अब आके उतर ही गया, उस बुखार को क्या उतारे, बोलो, संभव नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं एक सही घटना सुनाता हूं, नाम माम नहीं लूंगा, समझ लीजिए काल्पनिक है। तो एक आदमी ने अपनी रोका में मेरे नाम 10,000 रुपये जमा कर लिए, क्योंकि उसे एक नंबर में बहुत जरूरत थी और नंबर तो दो में बहुत पड़े थे और पेमेंट एक में करना था, क्या करे, एक में तो है नहीं है। तो उसने फरावर पंडित हुकुमचंद के नाम 10,000 रुपये जमा किए। जब मुझे पता चला कि इनने मेरे 10,000 रुपये जमा कर लिए तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों किया आपने, अकड़ते क्यों, और नाम लिख देंगे, गलती सुधार लेंगे। कैसे सुधार लो गलती, उस लिखे मेरे नाम लिखे 10 दिन हो गए, क्यों पदम जी ठीक है ना, अब कैसे सुधारोगे आप गलती, क्या उसमें क्या है, आपके नाम में लिख देंगे 10,000, क्यों, तो गलती सुधर गई। बोलो मनन लाल जी, रोकड़ के हिसाब से तो सुधर गई है, नामे और जमा का खाता बराबर हो गया, लेकिन एक गलती सुधरी कि एक नई गलती और हो गई। बोला क्यों दिनेश भाई, हम ऐसी गलतियां सुधारा करते हैं, एक नई गलती करते हैं और कहते हैं पुरानी गलती सुधर गई। ये सब खाता बराबर हो गया ना, अब हमारे यहां आप जाकर कुछ लेन देन नहीं रहा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जिस दिन आपकी रोकड़ में मेरे 10,000 रुपए जमा हैं, उस दिन मेरी रोकड़ में आपके यहां नामे लिखे जाने चाहिए ना, और जिस दिन आपने नामे लिखे उस दिन मेरी रोकड़ में जमा होना चाहिए ना। आपकी रोकड़ तो मिल गई, लेकिन मेरी रोकड़ का क्या होगा? तुम्हारी रोकड़ को देख कर जब इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे यहाँ आएगा कि तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए वहां जमा हैं और मेरी रोकड़ में नामे नहीं लिखेंगे, तब क्या होगा? बोलो। तो वो गलती तो जो हो गई वो तो सुधर ही नहीं सकती। वास्तव में बात तो ऐसी है, सुधारने के नाम पर हम दूसरी गलती करते हैं। भूतकाल में जो कुछ हो गया है उसे तो पलटा ही नहीं जा सकता है, तो और हम पलटने के नाम पर एक नई गलती और करते हैं। तो भूतकाल तो जो सुनिश्चित हो गया उसमें तो कोई परिवर्तन संभव रहा नहीं, तो फिर हम वर्तमान को तो सुधारेंगे ना। बहुत से लोग कहते हैं ना, वर्तमान एन काले न वर्तयन्ते विचक्षणा। जो विचक्षण लोग हैं वो तो वर्तमान काल में बरतते हैं, भूतकाल के लिए रोने के लिए नहीं बरतते हैं। हाँ, छावड़ा जी के शब्द में कहो तो कहो, भूतकाल है सपना और भविष्य काल है कल्पना और वर्तमान है अपना। अब इनका जो वर्तमान है उसके बारे में विचार करते हैं कि वो कैसा अपना है, उसमें अपन कोई फेरफार कर सकते हैं क्या? क्योंकि भूतकाल तो सपने की बातें हो गई, अब भविष्य तो अभी कल्पना लोग की उड़ाने हैं, तो वर्तमान अपना है ना। तो वर्तमान को तो पलट सकते हैं क्या? तो क्या पलट सकते हैं बोलो, कि जो पर्याय वर्तमान में आ रही है, आ गई है, क्या बोले उसे भाषा में, क्या बोले वर्तमान में आ गई तो भूतकाल में चली जाएगी, आएगी भविष्य में चली जाई है, तो आ रही है तो वो एक समय की होती है। वर्तमान कितना बोलो, असली वर्तमान तो एक समय का होता है, बोलते तो हम ऐसा भी इसी शताब्दी में तो 100 साल का वर्तमान हो गया, लेकिन वास्तव में 100 साल का है। कुछ हमने भूतकाल पकड़ लिया, कुछ भविष्य पकड़ लिया और वर्तमान खड़ा कर लिया। हम बोलते इसी वर्ष तो हमने 8 महीना भूतकाल के पकड़ लिए और 4 महीना भविष्य काल के पकड़ लिए और 1 वर्ष का वर्तमान बना दिया। वर्तमान का उसमें कितना सा हिस्सा है? सर इसी माह कौन सी तारीख है आज? 12, तो 12 दिन भूतकाल के पकड़ लिए, 18 दिन भविष्य के पकड़ लिए और उसको इसी माह बोलने लग गए। इसी दिन क्यों? इसी समय क्यों? तो एक समय पहले तो भूतकाल में गया और एक समय बाद भविष्य काल में गया। राजवार्तिक में लिखा है कि दहति पलाला, घास जलती है, ये बात सही है ही नहीं, क्योंकि जब घास है तब जलती नहीं है, तब जलती है तब घास नहीं है क्या? इसलिए दहति पलाला ये वाक्य ही गलत है। तो क्या है? अग्नि दहति, बस वाक्य से जलती तो अग्नि है, घास तो कभी जलती ही नहीं, क्योंकि जब तक वो घास है तब तक जलती नहीं और जब जलने लगती है तो वो घास नहीं होती है, आग होती है। इस सूत्र ने का विषय बताया ना पंडित जी, तो नैगम संग्रह व्यवहार इस सूत्र में देखना, राजवार्तक में लिखा दहति पलाला सही नहीं है क्या? तो वर्तमान तो एक समय का है, तो तू एक समय में जो पर्याय आ रही है उसे पलटेगा है? पलटेगा क्यों? अरे जो पर्याय आती है वो असंख्य समय बाद तेरे ज्ञान की पकड़ में आती है, तू क्या पलटेगा उसे? वर्तमान में तो जो पर्याय आ गई आ रही सो आ गई, उसे कोई पलटना संभव नहीं है। और भविष्य की पर्याय तो भविष्य की पर्याय को तू पलटेगा? अभी तो तेरे ख्याल में ही नहीं है कि भविष्य में कौन सी पर्याय आने वाली है कि जिसे तू पलटे। कि मैं तो साफ स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो नरक में नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तेरे को पहले पता है कि तू नरक में जाने वाला है, क्यों? तो उसे तू पलट के स्वर्ग में जाने चला जाएगा। चलाला सैनिक है ना, साथ में नरक में जाने वाला था, उसने पलट के पहला नरक कर लिया। क्यों? भगवान महावीर से पूछते तो वे पहले ही बता देते कि पहले नरक के पहले ही पाथड़ी में जाने वाला है। नहीं बता पाते, तुझे पता ही नहीं है तो पलट गए क्या क्या। जब भविष्य का तेरे को एक एक बात का पता हो तो तू कह सकता है कि मैंने पलट के ऐसा कर दिया। जिसे तू पलटना कहता है, हो सकता है कि तेरे भविष्य में वो ही नक्की था। क्यों? तो बोलो, तीन काल की कौन सी पर्याय को तू पलटना चाहता है? अपनी और पराई किसी की नहीं। क्यों? अच्छा बोलो, भविष्य में कौन सी पर्याय लाना और कौन सी करना? फिर हम अपनी जो चाहेंगे वो लाएंगे। अगले सवाल तुम्हारी पर्याय का नहीं है, तुम तो सबकी पर्याय पलटना चाहते हो ना। तुम तो मौसम की बात है, तुम चाहे गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडक आ जाए। क्यों? तुम ठंडक लाना चाहते हो। कोई कहता नहीं नहीं सर्दी है, तो गर्म लाना चाहते हो। तो डिसीजन कैसे करोगे कि कौन सी पर्याय को नहीं आने दें और कौन सी पर्याय को आने दें? पहले अपने घर का झगड़ा निपटा लो। पति को पंखा नहीं चलाना है क्योंकि उसे सर्दी लगती है, और पत्नी को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उसे 6 नंबर पर पंखा चलाना है। करो निपटारा, कैसे कर दो करो। वो पंखा चलाना तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं। और कौन से नंबर पर चलाना है? ये दो आदमी का झगड़ा नहीं निपटता है। क्यों? तो दो बेडरूम चाहिए, और दो बेडरूम में होते ही सारे जगत को मालूम पड़ता है कुछ गड़बड़ चल रही है। क्यों? क्यों बदल दीदी? ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? कैसा? वो कुछ नहीं, वो पंखा का चक्कर है, कोई मानेगा? तो कमल सिंह जी, तुम्हारे यहां तो नहीं होता है झगड़ा? परी सभा में कहने में शर्म लगती हो तो कोई बात नहीं है, घर के मिट्टी के चूल्हे कौन सी बड़ी बात है। कहने का मतलब, दो आदमी से नक्की नहीं हो सकता है, तो अनंत आदमियों की इच्छा है, अनंत जीवों की। एक चाहता है ऐसा हो, एक चाहता है ऐसा हो, तो वो परिणमन किसकी इच्छा के अनुसार होगा? कैसी गजब की बात है कि सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार परिणमन हो तो इस मूर्ख को लगती है परतंत्रता, और अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो इसमें लगती है स्वतंत्रता। मैंने ज्ञान भी अपना नहीं, सर्वज्ञ का, भगवान का, वीतरागी का, उसके ज्ञान के अनुसार हो उसमें हम पराधीन हो जाएंगे नरेंद्र। और हम ऐसी इच्छा वाले जीव जो दो जीवों की इच्छा मिलती ही नहीं है, उनकी इच्छा के अनुसार जगत में परिणमन हो तो हमें आजादी मिल गई, हमको ऐसा लगता है। अज्ञानी की इच्छा के अनुसार परिणमन में आजादी, और केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार परिणमन में परतंत्रता। ये बुद्धि की बलहारी है और नहीं, बोलो। मान लो दो आदमी की बात हो कि एक की इच्छा ऐसी है और दूसरे की ऐसी है, लेकिन आप कोई फुल पावर दे दिया कि आपकी इच्छा के अनुसार ही सारे जगत का परिणमन होगा, केवली के ज्ञान के अनुसार नहीं, बस आप जो चाहेंगे वो होगा। अब तो खुश हो? जरा सोच लेना, एक एक क्षण में तेरी इच्छा बदलती है। क्यों चैतल जी, कल आपका प्रयोजन होगा? नहीं नहीं, आपका नहीं। छाबड़ा जी का क्या हुआ? एक सेकंड में कहते ही कहते और विचार बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, बोलो? तेरी इच्छा का कोई ठिकाना है? जब तूने पत्नी से कहा कि आज तो मंगोड़े बनने चाहिए, और उसे मंगोड़ी बना के तैयार गई, और तब तक तेरी इच्छा बदल कर भुट्टे खाने की हो जाती है। समझ में आया ना? तेरी इच्छा का ठिकाना है जिसके अनुसार तू ये जगत का परिणमन चाहता है, और ऐसी ऐसी विचित्र इच्छा है कि तू कभी उसे सोच भी नहीं सकता है। मैं थोड़ी कल्पना कराऊं आपको तो लगेगा, किसी के बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नहीं होता जल्दी बढ़े जल्दी बढ़े जल्दी बढ़े, ऐसा लगता कि नहीं लगता? कभी बैठने लग जाए, कभी चलने लग जाए, कभी दौड़ने लग जाए, कभी स्कूल जाए। क्यों? होती इच्छा के नहीं। उसका बस चले तो 1 वर्ष में 5 वर्ष का कर दे उसे, फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब इसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर कहता है माथा मत खाओ, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, ऐसा ही होता है। नहीं नहीं कमजोर बहुत लगता है। क्यों? इसका बस चले तो एक वर्ष के बच्चे को पांच वर्ष का कर दे, पांच वर्ष के बच्चे को 25 वर्ष का कर दे के इसको बारात ले जाना, दुल्हन आएगी, बारात आएगी, उसकी बड़ी तमन्ना है मरने के पहले एक दफे साफा बांध के बेटे की बारात में जाने की। क्यों? पांच बरस में ही। क्यों जी? यदि आपकी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि आपका बेटा पांच बरस में 25 वर्ष का हो जाए तो आप खुश हो ना, बहुत बढ़िया हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात है कि उसी रफ्तार से आप भी बढ़ोगे। समझ में आया कि नहीं? आप हो 25 वर्ष के, अब बेटा है एक वर्ष का, तो वो एक वर्ष में पांच वर्ष का होगा तो तुम उसी रफ्तार से बढ़ोगे तो कम से कम एक वर्ष में 30 वर्ष के हो जाओगे, 26 के नहीं होगे। पांच वर्ष तुम भी बढ़ोगे ना एक वर्ष में। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। जरा सोच के बोलो कि दूसरे साल बच्चा होगा 10 वर्ष का, एक वर्ष दूसरे वर्ष में, और तुम हो जाओगे 35 के, फिर तीसरे वर्ष में बच्चा होगा 15 का और तुम 40 के। तो इस तरह तो हम 5-7 वर्ष में ही 60 वर्ष के बुढ़े हो जाएंगे क्या? हाँ सोच लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। तो क्या चाहते हो? कहना ही मैं तो 5 वर्ष में 1 वर्ष बढ़ू और बेटा 1 वर्ष में। बेटा जल्दी जल्दी बढ़े और मेरा बढ़ना बंद हो जाए। क्यों? तुम्हारी उम्र क्या है? 25 वर्ष। कि पिछले वर्ष की तुम 25 वर्ष की थी? ये साहब आप क्या बात करते हो, मैं तो 5 साल से 25 वर्ष की हूँ। होता क्या नहीं होता? अपनी उम्र तो ये चाहता है कि यही रुक जाए, आगे बढ़े नहीं, और बच्चे की उम्र बढ़े ऐसा असंभव मांग पूरी हो सकती है? बोलो तारातंद भाई, नहीं हो सकती। आप कहो तो हम सिफारिश करके यही करवा सकते हैं, लेकिन सोच लो एक दफा। तो क्या सोचना? आप करवा सकते तो करवा ही दो, करवा दें अमित भाई। तो समझना कि आपका बेटा एक वर्ष में 5 वर्ष का हो जा और आप 25 के ही रहोगे, दूसरे वर्ष बेटा 10 वर्ष का और आप 25 के ही रहोगे, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। तीसरे वर्ष में बेटा 15 वर्ष का, आप 25 के ही रहोगे। चौथे वर्ष में बेटा 20 वर्ष का, आप 25 के ही रहोगे। पांचवे वर्ष में बेटा 25 वर्ष का, क्यों? फिर तो मेरा वो जुड़वा भाई ज्यादा लगेगा, मैं बाप कैसे रहूंगा? जल्दी क्यों घबराते हो? थोड़े आगे और बढ़ो। अभी जुड़वा भाई नहीं, तुम्हारे बाप जैसा लगेगा। बोलो। इन अज्ञानियों की इच्छा के अनुसार यदि जगत का प्रणमन होने लग जाए तो इस जगत की क्या दुर्दशा होगी, जरा कल्पना करो। और उसको तुम आजादी समझ रहे हो कि हमारी इच्छा के अनुसार जगत में काम हो तो वो आजादी होगी, और ईश्वर के भगवान केवल जी के ज्ञान के अनुसार जो क्रमबद्ध पर्याय है उसमें हमें परतंत्रता लगती है। क्यों? तो भविष्य का हमें पता नहीं है तो हम क्या बदले और क्या करें? कि हमको जल्दी मोक्ष चाहिए। कि कितने जल्दी चाहिए? कि वो जब जाना है नवाई क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से उसके जरा पहले जल्दी चाहिए। क्यों? तो उसके पहले कहीं जाना भी तो नक्की होगा ना, माने सुरक के जलिए मोक्ष चाहिए, यही मतलब है ना, कि नरक के बलिए सुरक चाहिए। तो तुम्हें मालूम है सुरक जाने वाले हो कि नरक जाने वाले? तुम्हें नक्की पता ही नहीं है तो क्या बदल ले? तुम्हें मांगे इस मामले नहीं आती, तुम्हारी एप्लीकेशन में तुम चाहते क्या हो यही नहीं लिखा है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। बोलो आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते तो क्या कह रहे? बोलो। अरे जी मेरे पास एक भाई आए, चार भाई, इतनी बड़ी लंबी एप्लीकेशन लेकर के यहीं होंगे शायद अभी, और उनके साथ में एक कोई नेताजी भी आए, और उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोलो बोलो क्या चाहते हो? तुम्हारे पैसे वापस करा दूं? 1000 रुपये दिए तुमने? कहा हाँ दिए हैं, वापस करा दूं? अरे प्रकाश जी इनके पैसे वापस कर दो। नहीं 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 चाहिए सर। तो क्या चाहिए? करा दूं? नहीं चाहिए सर। तो आप क्या चाहते हैं? तो जो आप चाहते हैं, जो आपकी शिकायत है, यदि वो करूं तो उसका परिणाम आप जानते हैं? तो मैंने सारा गणित लगा करके बताया। बोलो आप ये चाहते हो? जो आप मांग कर रहे हो उसका गणित ए है, वो आप चाहते हो तो मैं ए कर दूं कि नहीं, ये नहीं चाहिए। तो क्या कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे दोस्तों हमारा पत्र वापस दे दो। तो वापस ले गए निर्मल जी। तो आपने यदि वहीं पे बैठ के शांति से सोचा होता, क्यों अपनी मांग तो नक्की करके लाते कि क्या चाहते हो, क्यों तो हम यदि क्रमबद्ध पर्याय को पलट कर चाहते क्या है एक दफे घर पे बैठ के शांति से नक्की करो, तो तुम यही कहोगे कि हम तो यही चाहते हैं कि पर्याय क्रमबद्ध हैं और दे ही रहे, यही चाहते होगे। लेकिन बिना सोचे समझे ये बात करते हो तो ऐसा प्रश्न खड़ा होता कि भाई ये व्यवस्था सही नहीं है, इसे बदल दी जाए। अचल जी यदि गंभीरता से विचार करके निर्णय करते तो जो है उसी व्यवस्था को सहज स्वीकार तुम्हारे चित्र में हो जाता, क्योंकि किसी की बनाई थोड़ी है, वो तो वस्तु के स्वरूप की पड़ी हुई व्यवस्था है। उससे वस्तु के स्वरूप में इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि वो तेरे पक्ष में है। तेरे पक्ष में कैसी है देखो बताऊं मैं उदाहरण तोड़ करके क्रमबद्ध व्यवस्था को, कि संसारी जीव संसार में से मोक्ष में नहीं जाते हैं पद्म प्रसाद जी, और मोक्ष में से संसार में नहीं आते। बोलो पलट दें इसे, संसार में से मोक्ष में नहीं जाएं और मोक्ष में से संसार में आने लग जाएं, ठीक है। अरे तेरे हित में है भाई साहब, कि इसका मतलब हुआ कि दुखी जीव सुखी होते हैं और एक दफे जो सुखी हो गए वे द्वारा दुखी कभी नहीं होंगे, पूरे सुखी हो गए। तो ये तो तेरे पक्ष में है ना ये व्यवस्था, तू इसे पलटना चाहता है। इस साइकिल में हवा भरते हो कि नहीं, वो पंप से हवा भरते हो साइकिल में, तो उसमें एक नए पैसे का एक बाल होता है, क्या बोलते बाल बोलते, बाल बोलते क्या हो? आप समझ तो गए कुछ भी बोलते हो, उसका क्या काम है भाई साहब, मुफ्त में एक पैसा क्यों दिया। साइकिल के पहिए पे तो आप दौड़ते हो, सीट पे तो आप बैठते हो, वो तो काम का है। वो बाल क्या काम का है, तो बड़े काम का है कि जब हम यहाँ पंप में से हवा डालते हैं तो अंदर जाती तो है लेकिन लौट के नहीं निकलने देता, वन वे ट्रैफिक है। एक नए पैसे का बाल वे काम करता है क्या, कि आप बाहर से हवा डालो तो अंदर जाती है और अंदर से बाहर नहीं आ सकती है, और वो नहीं होता तो हम भरते ही रहते, जितनी डालते हो खींचते पंप को उतनी बाहर निकल जाती। क्यों साइकिल के पहिए में हवा भर सकते थे, वो बाल में नहीं होता, तो एक बाल का कितना काम है। बोलो कोई व्यवस्था सही है क्या गलत है, वो बाल्व की व्यवस्था, बाल की व्यवस्था सही है ना। तो ऐसे ही तो बाल्व यहाँ लगा हुआ है कि संसार में से हर रात छह महीना और आठ समय में 600 जीव मोक्ष जाते हैं और लौट के एक नहीं आता है। बोलो इस व्यवस्था को पलट दें, ये क्रमबद्ध है। बोलो कितनी बढ़िया है, दुखी से सुखी होते हैं और सुखी से फिर दुखी नहीं होते, तेरे पक्ष में है क्या नहीं। संसार में से मोक्ष में जाते हैं और मोक्ष में से संसार में नहीं आते हैं, अल्प ज्ञानी से केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी से फिर अल्प ज्ञानी नहीं होते हैं, रागी से वीतरागी होते हैं, वीतरागी से फिर रागी नहीं होते हैं। बोलो ये है तेरे क्रमबद्ध में, नहीं है पसंद। इससे बढ़िया तू कौन सी व्यवस्था करेगा कि हमें तो साहब मोक्ष में से भी लौट के आने की सुविधा चाहिए। ये क्या अनंत काल तक के लिए वहां फंस जाए। अरे तू क्या कह रहा है, तू सुखी हो गया उससे फिर दुखी होने की बात कर रहा है। ये जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया है कि इससे बढ़िया कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। तीन काल के समयों में जो नक्की है, भूतकाल का हो चुका उसमें कुछ संभव नहीं है, भविष्य का अभी पता ही नहीं है उसका क्या बदलें, क्यों और वर्तमान एक समय का है जो असंख्य समय में पकड़ में आता है, अब वो बदले जब तक तो वो हो चुका है। बोलो जैसे तुम उसे मारने जाओगे तब तक तो वो मर चुकेगा, पलटना माने क्या कि जो हो गया ये नहीं होना चाहिए था, यही मतलब है ना। तो तुम नहीं होने चाहिए कि हाँ, तो जाके देख वो तो नहीं है, हो गया। जब तक तू नहीं है की बात करता तब तक तो वो चला ही गया, अब उसे क्या निकाले। बोलो तो काल की दृष्टि से विचार किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जरा वस्तुओं की दृष्टि से विचार कर लें कि साहब हम सब कुछ क्रमबद्ध है, हमारी समझ में नहीं आता सब कुछ, नहीं मानते तो कुछ कुछ तो है, क्यों अपने आप चलता है, किसी के चलाए नहीं चलता, और सब कुछ नक्की है, सुनिश्चित है। बोलो तो बिल्कुल ही नहीं है महिपाल जी, नक्की करो तो सूरज की चाल तो नक्की है कि नहीं, मुझे बताओ कि उसमें भी हमें कुछ करना है। सूरज की चाल नक्की है ना। देखो ये साधारण पंडित जो 1000 रुपए महीना तनख्वाह भी नहीं पाता होगा, वो भी 100 बरस का पत्रा बना देता है कि जयपुर में आज सूरज इतने बजे उगेगा, इतने बज के इतने मिनट पे, कल इतने बज के इतने मिनट पे, 365 दिन का बता देता कि नहीं, तो 100 साल का बता देता कि नहीं। तो सूरज की चाल नक्की है कि जयपुर से कब कब पास होगा, तो वो नक्की नहीं है तो बताता कैसे है, और जो उसने बताया है वो बदल देगा, कभी आध घंटे बाद आएगा, पहले आएगा, ऐसा है। सूरज की चाल तो नक्की है, जबलपुर से कब निकलेगा, जयपुर से कब निकलेगा, बंबई से कब निकलेगा, क्यों कलकत्ता से कब निकलेगा, होता कि नक्की है कि नहीं, और न्यूयॉर्क में कब निकलेगा और इंग्लैंड में कब निकलेगा, एक एक गांव का, एक एक समय का नक्की है कि नहीं, बोलो। एक तो नक्की करेंगे सूरज की चाल नक्की है, और आप ये भी कहते तो कुछ नक्की नहीं है, तो नक्की है, नक्की तो उसे कहते हैं कि रोजाना एक समय पर निकले, आज का अलग समय, कल का अलग समय, परसों समय अलग, ये नक्की कहलाता है। बोलो आज पंडित जी 9 बजे प्रश्न करने आए, कल 9:15 बजे आए, परसों फिर 9 बजे आ गए, फिर 9 समय आए, ये नक्की है, कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा सूरज का है, 365 दिन में 365 समय, ये कोई नक्की होता है, इसको नक्की भी कह सकते हो और नक्की नहीं है भी कह सकते हो। रोजाना है, तुम रोजाना का एक ही समय हो उसे नक्की मानो, और रोजाना का अलग अलग नक्की नहीं हो सकता है। सबकी मनुष्यों की उम्र 120 वर्ष की हो और कोई आदमी 120 वर्ष से कम में नहीं मरे, न ज्यादा चले, तो तुम नक्की मानोगे, और सबकी अलग अलग नक्की हो, नक्की नहीं है। तो अज्ञानियों को कहता कुछ नक्की नहीं है, गर्मियों में 5 बजे निकल गया सूरज, सर्दियों में 7 बजे तक नहीं निकले, नक्की है कोई, ये सूरज का ठिकाना है, कुछ ठिकाना नहीं। इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि नक्की नहीं है, और इसी को ये भी कह सकते हैं कि नक्की है। बोलो वास्तव में सूरज की चाल तो व्यवस्थित है, लेकिन हमारी मति अव्यवस्थित है तो उसमें नहीं आता है, तो हम सूरज की चाल को अव्यवस्थित कहते हैं। दिक्कत है कि हमारी बुद्धि अव्यवस्थित है और हम जगत को अव्यवस्थित मानते हैं। व्यवस्थित करना है हमें अपनी बुद्धि को, और हम जगत को व्यवस्थित करना चाहते हैं। अब रेल में बैठे बैठे जाते हैं कि नहीं जाते, तो आपने बाहर को देखा होगा, वृक्ष दौड़ते दिखते हैं कि नहीं, पेड़ दौड़ रहे हैं, कब देखे थे आपने, ठीक है ना। सोचेगा तुम बैठे थे और पेड़ दौड़ रहे थे, यही सच्ची बात है ना। अब जरा विवेक से पूछो, अंदर में जाकर गहराई में देखो कि पेड़ दौड़ते हैं, पेड़ तो अपनी जगह खड़े थे और दौड़ कौन कौन रहे थे, तुम रेल में बैठे, रेल दौड़ रही थी, तुम दौड़ रहे थे कि नहीं, जगह कौन बदल रहा था, तो हम दौड़ रहे थे और हमें रेल दौड़ दस दौड़ते दिखते हैं, ऐसी हमारी मति है अव्यवस्थित और हमें जगत अव्यवस्थित दिखता। कभी कभी आपको ऐसा नहीं होता है कि आदमी चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है चक्कर आ रहा है, बोलो अचल जी क्या होता है, अचल को जब चक्कर आते हैं तो क्या होता है, सारा हॉल घूमता दिखता है, देखता क्या, ये सब बिल्डिंगे घूम रही है, बिल्डिंगे घूम रही है, तेरा माथा घूम रहा है, घूमता है अपना माथा तो दिखती है जो बिल्डिंगे घूम रही, तो बिल्डिंग को पकड़े कि देना घूमे, किसका इलाज कराना है, इलाज कराना है अपने माथे का, और हम बिल्डिंगों का कराते हैं। जगत है व्यवस्थित और हमारी मति है अव्यवस्थित, इसलिए जगत में अव्यवस्थित दिखाई देता है। ये जो पढ़ रहे हैं ना आप क्या चल जी 80-81-82 गाथा, तो इसमें ही लिखा है अब मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, इसलिए चुप रहो विराम बस खत्म, व्यवस्थिता मम मति, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। व्यवस्थित करना है अपनी बुद्धि को और हम जगत को अव्यवस्थित मान रहे हैं। तो सूर्य की चाल व्यवस्थित है क्या नहीं, वो चंद्रमा की चाल व्यवस्थित है क्या नहीं, क्यों अमावस को गायब भाई साहब, और पूर्णमासी को पूरे ही उपस्थित है, और अश्विनी को आधे आधी रात से गायब हैं और दूसरी अश्विनी को दूसरी आधी रात गायब थे। तो इनका कोई भरोसा ही नहीं है चंद्रमा का, सूरज का तो भरोसा है ना। क्यों भैया लाल जी, चंद्रमा का है कोई ठिकाना? अरे उसका भी नक्की है, किस दिन आधा रहेगा, किस दिन पूरा रहेगा, दो का चंद्रमा कैसा रहेगा, तीज का कैसा रहेगा, ये सब पत्रा में नहीं लिखा है? फोटो शायद बना है कि नहीं बना है? तो सूर्य की चाल नक्की, चंद्रमा की चाल नक्की। क्यों साहब, अब एक एक सोचते जाना, कहीं ऐसा ना हो कि सारा जगत नक्की हो जाए और तेरा गैर नक्की कुछ रहे ही नहीं। क्यों, संडे के बाद क्या आता है? इतवार के बाद कौन सा बार आता है? सोमवार। ऐसा नहीं है कभी मंगलवार आ जाए? अपन लोग कोशिश करें, एक एप्लीकेशन लिखे गवर्नमेंट को दे दें। क्यों साहब, सोमवार अच्छा नहीं है, सीधा संडे, इतवार के बाद सीधा मंगलवार, कम से कम एक बरस तक नहीं हो सकता? क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने नक्की थोड़ी किया है जो बदल दे। तो किसने नक्की किया है? भगवान ने। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नक्की किया ही नहीं किसी ने, वो तो नक्की है ही। कब से नक्की है? अनाधिकाल से। कब तक रह रहा है नक्की? तो ये तो नक्की है ना, ये भी अव्यवस्थित है। क्यों भाई साहब, तो बार नक्की है, तिथि नक्की है, तारीख नक्की है। क्यों, अब ये जो पंचम काल है ना, अब इसके बाद तो चौथा काल आ जाएगा ना। क्यों, चौथा लाए ना अपन लोग कोशिश करके। लोग कहते हम स्वर्ग को यहीं उतार के ले आएंगे, हम चौथे काल को ले आए। तो कुछ लोग तो कहने लगते, ओ गुरुदेव आपकी शरण में आए चौथा काल बढ़ रहा, कर्जा बेटा सूली पे भरा करे भगवान। क्यों, चौथा काल ऐसे ही भरता होगा? क्यों, क्यों पंचम काल ही रहने देना, जब तो छठवां आने वाला है तो चौथा लाना वाला है, नहीं ला सकते है ना? क्यों, क्योंकि वो तो क्रमबद्ध नक्की है ना, तो काल भी नक्की है, दिन और रात भी नक्की है, सूर्य चंद्रमा भी नक्की है, बार भी नक्की है। ऐसे विचार करते करते जाएंगे तो कोई भी ये बात नक्की नहीं होने वाली है कि जो तेरे हाथ में बचे। बोलो मोहनलाल जी, आपका पहले एक बचपन आया ना, फिर जवानी आई, बुढ़ापा आया। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले बचपन से सीधा बुढ़ापा आ जाए और बाद में फिर जवानी। भगवान से ऐसी प्रार्थना, कुछ हो जाए तो ठीक रहेगा ना। क्यों भाई साहब, हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी नक्की। तुम तो उस जैसा कर रहे हो कि जैसे एक ब्राह्मण की लड़की को एक मुनिराज ने 5 अनुवृत्त दे दिए थे, है पता ने? 5 अनुवृत्त दे दिए थे, तो लड़की ने कहा कि आज मैं महाराज से व्रत लेके आई हूँ। तो उसने कहा कि ये कैसे हिम्मत कि मेरी लड़की को मेरे पूछे बिना कुछ दे, चल मैं तो वापस करके आएंगे। क्या नहीं, नहीं बेटा, अच्छी चीज है कि होगी, हम कुछ नहीं जानते, तुम वापस करेंगे, लेके चले। तो रास्ते में एक आदमी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस लड़की ने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? इसने किसी की हत्या की है इसलिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, तो आप चाहते हो कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए? क्यों, तो महाराज ने यही तो कहा था कि किसी की हत्या नहीं करना, अहिंसा नहीं करना। मैंने अहिंसा व्रत तो लिया है, ठीक है ठीक है, एक रख लेंगे, बाकी के 4 वापस करेंगे। आगे गए तो एक आदमी की जबान काटी जा रही थी, तो कहा इसका क्या हो रहा है, किसने झूठ बोला है? तो आप चाहते हैं कि मेरी जबान काट दी जाए? तो नहीं नहीं बेटी, क्या बात करती है, यही तो उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलना। ठीक है दो ही रख लेंगे। ऐसे ही किसी के हाथ काटे जा रहे थे, तो इसने चोरी की है, तो कहते 3 भी रख लेंगे। क्यों, ऐसे ही 5 ही व्रत आए, और उसने कहा ठीक है तू 5 ही रख लेना, लेकिन मैं उलहना तो दूंगा जाकर के, मेरे से पूछे बिना उसने दिया क्यों? क्यों, तो कहीं ऐसे ही 13 नहीं हो, तो हम कृपद नहीं माने एक एक बात को, कि चलो इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, अंत में हाथ में उलहना नहीं रह जाए। तो गंभीरता से विचार तो कर, किस चीज को तू चाहता है कि वो क्रमबद्ध नहीं हो? क्यों, कैसा वो ठीक, हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ये पसंद नहीं है। क्या कि हम किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। जब हम किसी का भला बुरा कर ही नहीं पाएंगे तो कौन हमसे डरेगा, बुरा नहीं कर पाएंगे तो कौन हमसे डरेगा? क्यों कोमल सिंह जी, वो भला नहीं कर पाएंगे तो कौन हमारा उपकार मानेगा? इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो शासक शासक ही नहीं है कि जिसका क्रोध कोई परिणाम नहीं लाए और जिसकी प्रसन्नता कोई परिणाम नहीं लाए, उसे कोई क्यों डरेगा। तो नाराज हो जाएगा तो ये कर देगा, कुछ करेगा ही नहीं, और खुश होकर के कुछ देगा नहीं, और नाराज होकर कुछ छीनेगा नहीं, तो उससे कौन डरेगा। क्या ख्याल में आया ना, वो तो शासक को तो यदि नाराज हो गया तो उसकी नाराजगी का सामने रूप आना ही चाहिए, अकेला उसके सामने नहीं सारे जगत को मालूम पड़ना चाहिए कि देखो ये नाराज हो गया, उसको निकाल बाहर कर दिया। तब एक के अपन कहते ना एक पे अनुशासन की कार्यवाही होगी तो बाकी के सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, कहते कि नहीं कहते। तो हमारे हाथ में तो फिर कुछ ही नहीं रहा, हम न किसी का भला कर सकते न किसी का बुरा कर सकते, तो हमसे कोई क्यों डरेगा, क्यों और क्यों हमारी गुलामी करेगा। अरे भाई तू ऐसा क्यों नहीं सोचता है, जब हमने कहा कि एक दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता तो तू ये क्यों सोचता है कि मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं सोचता कि कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। इस नियम का परिणाम तेरे को ये क्यों नहीं आता, अब मेरे को काहे का डर क्योंकि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, और अब मेरे को काहे की किसी का गुलामी करने की जरूरत है क्योंकि मेरा भाग्य नहीं होगा तो कोई मेरा भला। उल्टी क्यों सोचता है कि मैं किसी का नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं सोचता कि तेरे को कितनी बड़ी आजादी मिल रही है, उल्टी बुद्धि चलती है। कि हम तो एक नहीं कहा था कि तू किसी का नहीं कर सकता, हमने तो एक कहा था कोई किसी का नहीं कर सकता, तो उसका ये अर्थ भी तो हो सकता है ना कि कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता और कोई तेरा भला नहीं कर सकता, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी नहीं आती, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई हमारा भला बुरा नहीं कर सकता है। जरा सोचो कोई आदमी कहेगा कैसा राज्य है, यहाँ कोई न किसी को चोरी करने की आजादी है, न किसी को लूटने की आजादी है, न माँ बहन को छेड़ने की आजादी है, ऐसा कोई बोलेगा कैसा देश। कोई कहते कि देखो भाई ये तो इतना बढ़िया राज्य है कि आदमी हाथ पर रात के 12 बजे सोना लेकर निकल जाए तो कोई डर नहीं है, और कोई माँ बहन रात को 2 बजे अकेली जाए यहाँ से बम्बई क्यों तो कोई डर नहीं है। तो ये अच्छे राज्य की निशानी है कि खोटे राज्य की, बोलो कि कोई किसी का नहीं कर सकता है, ये जो है ये तो अच्छे राज्य की निशानी है ना। और कोई कहे कि नहीं नहीं हमको तो किसी का कुछ चोरी करने की आजादी नहीं, माँ बहन को छेड़ने की आजादी नहीं, तो ऐसा तो कोई चोर गुंडा बदमाश ही कह सकता है, सज्जन आदमी तो ऐसी बात कहेगी क्यों। गजब हो गया ये स्वतंत्र भारत, ऐसी सुविधा मिली थी हमें कि सड़क पे हम ढंग से चल भी नहीं सकते, वहां पर भी प्रतिबंध बाई तरफ चलो। इस आजादी के लिए हमारे गुरुजनों ने कुर्बानी दी थी कि हम यदि बाई तरफ नहीं चलेंगे तो पुलिस वाले हमें डंडा मार मार के बाई तरफ चलाएंगे, क्यों हम बैठ भी नहीं सकते थी सड़क पे, ये किसी के बाप की है सड़क, हम तो लेटेंगे नहीं, क्यों हमें सड़क पे लेटने की आजादी चाहिए, हमें सड़क पे बैठने की आजादी चाहिए, हमें लाल बत्ती में चलने की आजादी चाहिए, तब देश आजाद कहलाएगा, बोलो क्यों। महात्मा गांधी ने इसी आजादी के लिए किया था, जो कहे हाँ सत्य आजादी तो हमारे हिंदुस्तान में है, यहाँ अमेरिका में काहे की आजादी है, हम जहाँ चाहे वहां पेशाब भी नहीं कर सकते, पेशाब करने भी पेशाब घर में जाओ, हमारा देश कैसा आजाद है, चाय ना निकलो चाय जाते कहते हैं आजादी जो देखो पता नहीं है। तू काय की स्वतंत्रता चाहता है, क्या चाहता है तेरे को पता ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये इतनी बढ़िया बात को तेरे को खतरा दिख रहा है, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को मार जिला नहीं सकता, सब अपने समय पे ही मरेंगे, सब काम समय पर होगा। बोलो पूज गुरुदेव श्री की प्रशंसा हम करते कि नहीं, कि 3 बजे प्रवचन माने 3 बजे, 3:01 नहीं और 1 मिनट पहले नहीं, क्यों 4 बजे खत्म माने 4 बजे, तो हर काम समय पर होने के तो आप इतने पसंद है ना आपको। तो उन्हीं ने ये बताया कि सारा जगत में हर काम समय पर होता है, वो तुझे पसंद क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। समय पर होना ये सही है कि गलत है, कोई भी काम अपने समय पर होगा, उसके एक समय पहले होगा नहीं और एक समय बाद होगा नहीं, क्यों। और जो जिसके योग्य होगा वो ही होगा, क्यों योग्यता के अनुसार ही होगा, क्यों भाई साहब। तो आप क्या चाहते हो, तो अयोग्यों को मिले कि योग्यों को मिले। बोलो मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती होना चाहिए कि साहब फिर क्या हम नेताओं का क्या काम रहेगा? मेरिट लिस्ट के हिसाब से सब भर्ती होंगे ना तो हमारी सिफारिश नहीं चलेगी, तो हमें कौन पूछेगा, तो हमें वोट कौन देगा? बोलो 10-5 लड़के तो हमारे हाथ में रहना चाहिए जिन बेवकूफों को हम भर सके। क्यों चाहिए हमें 10-5 हमारे हाथ में? न्याय के अनुसार मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती हो जाएंगे ना। प्रधानमंत्री को भी एक सीट क्यों चाहिए मैं आपसे पूछता हूँ? लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा होगा ही नहीं, हमें तो हरेक को चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्ता बुद्धि वाले ये व्यवस्थापकों की समझ में क्रमबद्ध पर्याय कभी नहीं आएगी। क्यों? ये व्यवस्थापकों को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था वे करें। यदि सब कुछ व्यवस्थित ही हो तो फिर इनकी नौकरी जाती है बेचारों की, इनकी नेतागिरी खत्म होती है, फिर ये काय की व्यवस्था करें? क्यों मेरे प्रधान किया करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, जब शांति से सारी सभा बैठी हो, व्याख्यान सुन रही हो और वक्ता बोल रहा हो तो कितना बढ़िया है, लेकिन व्यवस्थापक ऐसा मुरझाया बैठा है। क्योंकि पूरा व्याख्यान हो गया, सभा खत्म हो गई और लोगों को पता ही नहीं चला कि व्यवस्थापक कौन है। क्यों? और बीच में जरा हल्ला गुल्ला हो जाए तो अरे भैया शांति से बैठ, शांति तो मालूम पड़ेगा ये है नेता जी। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ठाकरे जी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति से भजन चल रहा, कुछ बात नहीं है। ए भाई साहब थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, पीछे वालों आने बोले कोई आई है ना पीछे, इसे बहुत पड़ी शुक्र कर, तो थोड़े थोड़े आगे बढ़े आप पीछे वालों बोले कहा पीछे वाले, क्यों? क्योंकि पता तो लग जाए लोगों को समझ में आओ ना, अंग्रेजी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको तो चाहिए। कल भी कार्यक्रम रोजाना के तमाम होंगे चाहिए ना, मेरा मतलब समझे ना कि उसको स्पेशलाइजेशन कुछ ना कुछ चाहिए। ये अव्यवस्थित हो जगत तो उसको एक व्यवस्थापक चाहिए, तो वो ये मान ले कि सब कुछ व्यवस्थित है तो वो व्यवस्थापक किस बात का? यदि सब कुछ नक्की है तो भगवान की भगवत्ता जाती है, वो ईश्वरवादी जो जिसके बिना मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो सारे पत्ते उसकी मर्जी के बिना हिलने लग जाए तो पत्ते हिलाने वाले भगवान का क्या होगा? क्या पंडित जी क्रमबद्ध का सिद्धांत तो अकर्तावाद का सिद्धांत है भाई। पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि न आज तक मेरे किए कुछ हुआ है, न हो रहा है, न भविष्य में होगा। कदाचित जो थोड़ा बहुत कथन आता है वो तो निमित्त निमित्त कथन है, निमित्त मात्रम, बस निमित्त मात्र हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में जो तुम्हारे पलटने की भावना है, एक जगह गहराई से विचार करना कि तुम क्या पलटना चाहते हो, जो व्यवस्था है उसमें क्या खराबी है, पलट के तुम क्या ठीक कर दो, तो ये ठीक रहेगा ना कि पहले बचपन से सीधा बुढ़ापा और बुढ़ा के बाद जमानी, ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो ठीक है बहन दोनों से चल रहा है। मतलब आपको कोई चीज बदलने लायक लगेगी ही नहीं, सब व्यवस्था इतनी बढ़िया इतनी सुंदर है कि इससे सुंदर कोई दूसरी व्यवस्था हो ही नहीं सकती, इसलिए बदलने का विकल्प भी क्यों?